नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले कुछ मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राष्ट्र आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और द्वीपों में अगले 2 दिनों तक वर्षा होने की संभावना है। सांध्य समाचारों के साथ मैं संगीता देवनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कृषि क्षेत्र की 2 प्रमुख पहल पीएम धनधान्य कृषि योजना और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आत्मनिर्भरता और किसानों के कल्याण के लिए ये 2 नई योजनाएं शुरू की गई हैं।
किसानों के कल्याण के लिए 2 महत्वपूर्ण नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है। पहली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ये 2 योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेगी। इन योजनाओं पर भारत सरकार करीब 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन भावी पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है।
आज से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू हो रहा है। ये सिर्फ दाल उत्पादन बढ़ाने का मिशन नहीं है, बल्कि हमारी भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का भी अभियान है। बीते सालों में भारत के किसानों ने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पन्न किया है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है।
श्री मोदी ने कहा कि पीएम धनधान्य कृषि योजना के अंतर्गत पशुधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के विकास के लिए देश की कृषि प्रणाली में सुधार आवश्यक थे और ये सुधार 2014 में ही शुरू हो गए थे। श्री मोदी ने कहा कि देश में 6 नई उर्वरक कंपनियां भी स्थापित की गई हैं और पिछले 11 वर्षों में किसानों को 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 से ज्यादा पिछड़े जिलों को आकांक्षी जिला योजना से विकसित किया जा रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगले जीएसटी सुधारों में सरकार ने कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को कम करके किसानों को राहत प्रदान की है। श्री चौहान ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने रबी फसलों के एमएसपी में भी वृद्धि की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अब तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में 3,90,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में 1,83,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। राष्ट्र आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नानाजी के निस्वार्थ सेवा के सिद्धांत सभी को ईमानदारी और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि नानाजी देशमुख एक दूरदर्शी समाज सुधारक, राष्ट्र निर्माता और आत्मनिर्भरता तथा ग्रामीण सशक्तिकरण के आजीवन समर्थक थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें 19 वर्ष की अवस्था में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री जयप्रकाश नारायण ने लोगों को सशक्त बनाने और संविधान की अखंडता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं छात्रवृत्ति योजना और मौसम की चेतावनी। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत पात्र अनुसूचित जनजाति के छात्रों से नए और नवीनीकरण दोनों आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के अभिभावकों की आय 2.5 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। आवेदन के सत्यापन की तिथि 15 जनवरी है। केंद्र शासित प्रदेश योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अतिरिक्त छात्रवृत्ति के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि भी 31 दिसंबर है। इसके लिए द्वीप समूह के सभी अनुसूचित जनजाति निवासी आवेदन कर सकते हैं। सभी पात्र अनुसूचित जनजाति छात्रों से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने को कहा गया है। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके आधार विवरण अपडेट किए गए हों और उनके वर्तमान बैंक खाते और पंजीकृत मोबाइल से लिंक किए गए हों, ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान विफल न हो। छात्रों की सुविधा के लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों में एक समर्पित हेल्प डेस्क के अलावा सचिवालय परिसर स्थित जनजातीय कल्याण निदेशालय में भी एक केंद्रीय हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुए जीएसटी बचत उत्सव का पूरे देश में लाभ मिल रहा है। आज पश्चिम बंगाल के विभिन्न उद्योगों को सशक्त बनाने वाले जीएसटी सुधारों पर एक रिपोर्ट।
अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से पश्चिम बंगाल के कारीगरों, किसानों और उद्योगों को व्यापक लाभ मिल रहा है। संशोधित जीएसटी दरों के तहत प्रमुख स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे उत्पादन में जुड़े सैकड़ों कारीगरों और ग्रामीण परिवारों की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। जीएसटी 2.0 के अंतर्गत दार्जिलिंग चाय के अर्क और एसेंस पर भी कर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कर कटौती ने दार्जिलिंग चाय उद्योग की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। इसी प्रकार प्रसंस्कृत आम उत्पादों, जूस और जैम पर कर 12% से घटाकर 5% करने से उनके खुदरा मूल्य में 6% से अधिक की कमी आई है। इस कदम से प्रसंस्कृत उत्पाद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती हो गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नई गति मिली है। जीएसटी में इन कर कटौतियों से ग्रामीण आजीविका सशक्त हो रही है, छोटे उत्पादकों के लिए लाभांश बढ़ाया है और पश्चिम बंगाल के पारंपरिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों के समग्र विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है। इन सुधारों के साथ बाजारों, समृद्ध समुदायों और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्थानीय उत्पादों को केंद्र के रूप में उभरने का मौका मिल रहा है।
मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशानुसार विभागों में मासिक मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। इसके अंतर्गत जहाज रानी सेवा निदेशालय ने कल नाव पलटने की स्थिति से निपटने पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। यह अभ्यास जहाजरानी सेवा विभाग के उपनिदेशक और घटना कमांडर बीसी सरकार की देखरेख में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में निदेशालय की आपदा प्रबंधन टीम ने भाग लिया। मालवाहक जहाज एमवी चुगलम 16 अक्टूबर को शाम 4 बजे हैडो जेट्टी से कार निकोबार, चौरा, तेरेसा, कछाल और ननकौड़ी होते हुए कैम्बल बे के लिए रवाना होगा और संबंधित बंदरगाहों पर माल उतारने के तुरंत बाद श्री विजयपुरम के लिए वापसी करेगा। और अब एक नज़र मौसम पर। द्वीपों के कई भागों में वर्षा हुई। आज सुबह 8:30 बजे तक श्री विजयपुरम में 44.6 मिलीमीटर, वायुसेना केंद्र कार निकोबार में 35.4, कार निकोबार में 27, मायाबंदर में 10.2 और ननकौड़ी में 2.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अगले 2 दिनों के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया गया है कि द्वीपों के एकाध स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राष्ट्र आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और द्वीपों में अगले 2 दिनों तक वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।